நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய, தேவகீ நந்தனாய ச, நந்த கோப குமாராய, கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமஹ பங்கஜ நாபாய, நமஹ பங்கஜ மாலினே, நமஹ பங்கஜ நேத்ராய, நமஸ்தே பங்கஜங்கயே. ஜதா ஹிருஷிகேஷ கலேன தேவகீ, கம்சேன ருத்தாதி சிரம் சுசர்பிதா. விமோசிதாஹம் ச ஸஹாத்மஜா விபோ, த்வயைவ நாதேன முஹுர்விபத்கணா. விஷான்மஹாக்னே புருஷாத் தர்ஶனாத், அஸத்ஸபாயா வனவாஸ க்ருச்சதஃ. மிருதே மிருதே நேக மஹாரதாஶ்ருதோ, திரோணாஸ்திர பச்சாஸ்ம ஹரே ரக்ஷதஃ. விபதஃ ஸந்து நஶஸ்வத், தத்ர தத்ர ஜகத்குரோ, பவதோ தர்ஶனம் ஜத் ஸ்யாத், அபுனர்பவ தர்ஶனா. ஜன்மை ஸ்வர்ஜ ஸ்ருத ஸ்ரீ ஏதமான மதஹ புமான், நைவார்ஹத்த விதாதும் வை, த்வாம் கிஞ்சன கோச்சரம், நமோ கிஞ்சன வித்தாய நிவ்ருத்த குண வ்ருத்தயே. ஆத்மா ராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதயே நமஹ. ஜான் பக்தியோ ரசக்கியத்துவம் உக்த்வா புனஹ கேவலம் நமஸ்கரோதி. ஜான் ஆர் பக்தி மே அப்னி அஸ்மர்த்ததா கஹதி ஹுயி குந்தி மஹாரானி புனஹ கேவல் பிரணாம் கர் ரஹி ஹை. கிருஷ்ண ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, வாசுதேவ் ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, தேவகி நந்தன் ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, நந்த கோப குமார் ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, கோவிந்த் ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, பங்கஜ் நாப் ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, பங்கஜ் மாலி ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, பங்கஜ் நேத்ர ஆப்கோ பிரணாம் ஹை, ஆர் பங்கஜாங்கிரி ஆப்கோ பிரணாம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே அங்கோ பர் தேக்தி ஹுயி குந்தி மஹாராணி பிரணாம் கர் ரஹி ஹை. और अब तत्कृतोपकारण अनुस्मरति, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए हुए उपकारों का स्मरण करना प्रारंभ करती है।
जथा हृषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा पिचिरंश चार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् मातृतो अपि मई अधिक।
मेरे साथ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इस सिद्धांत को, इस विचार को व्यक्त कर रही देवकी कंसेन रुद्धा अति चिरम रुद्धा। देवकी कंस के द्वारा कारागृह में अवरुद्ध की गई थी बहुत काल तक, अति चिरम, और बहुत काल तक वह शोक में डूबी रही। देवकी के शोक के कई कारण, एक तो वह पति के साथ वसुदेव जी के साथ कारागृह में थी, और कारागृह में भी उसके होने वाले पुत्रों का वध कर दिया गया। 6 पुत्रों को कंस ने मारा और 7वें पुत्र का पता नहीं चला, वो गर्भ से ही अदृश्य हो गया। योग माया ने उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु माता देवकी को इसका पता नहीं था कि मेरा बच्चा मेरे गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चला गया। यदि यह पता होता तो देवकी आनंद में होती कि मेरा एक बच्चा बचा हुआ है। और जब 8वां बच्चा हुआ तो उसे भी दूध पिलाने का सौभाग्य माता देवकी को नहीं मिला। आज का जन्म हुआ, अभी का बच्चा दूर हो गया, लेकिन देवकी के लिए थोड़ा सा आश्वासन था कि मेरी बहन की बच्ची हुई थी तो उसके स्तनों में दूध आई ही, तो वह मेरा दूध ना पीकर यशोदा का दूध पिएगा। फिर भी पुत्र के बिना इधर कारागृह में जीवन बीत रहा था, तो सब तरह से दुख ही दुख था देवकी के लिए। कुंती महारानी अपनी तुलना देवकी के साथ कर रही है। इस संसार में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने समकक्ष लोगों के साथ अपना मिलान करके देखता है। कुंती एक स्त्री है और भगवान की बुआ है, तो वह अपना अपने विषय में विचार कर रही है। और कृष्ण का कई स्त्रियों से संबंध है, तो जैसे देवकी माँ है, रोहिणी भी उनकी माँ है, श्री बलराम जी की माँ, और भगवान श्री कृष्ण की 5 बुआ हैं, जिसमें से एक कुंती। तो स्वाभाविक ही स्मरण आ रहा है कि कृष्ण हमारे साथ थे, कितना प्रेम करते हैं। कुंती महारानी इस निष्कर्ष पर आती हैं कि अपनी माता से भी, जिसके उदर में कृष्ण रहे, उससे भी बढ़ करके मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, तो उसी की याद कर रही हैं। एक बार कहती हैं कि हे ऋषिकेश, कारागृह में अति दीर्घ काल तक अवरुद्ध देवकी की जैसे आपने रक्षा किया, उसी तरह से मेरी किया, लेकिन इसमें काकवा ध्वनि छिपा हुआ, उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में काकवा ध्वनि है, क्या छिपा हुआ है, क्या आप मेरी रक्षा उसी तरह से किए जैसे देवकी की? नहीं, देवकी से अधिक मेरी रक्षा की, यह अर्थ है। क्यों? क्योंकि देवकी अति चिरम रुद्धा, बहुत वर्षों तक कारागृह में अवरुद्ध रहे, और इस कारण से सुचार पिता शोक में डूबी रहती थी सर्वदा, बहुत शोक में रही देवकी। और कौन डाला था कारागृह में? अपना भाई कंसेन, कंस डाला था और उसके बच्चों को मारता गया। तो आपने देवकी की रक्षा केवल एक बार किया, एक बार, और बहुत काल के बाद, अति चिरं सुचार पिता। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और वे चले गए ब्रज में, ब्रज में गोचारण करते थे, रासलीला करते थे, लेकिन देवकी उतने काल तक दुख में थी। कुंती कभी भी इतने समय तक दुख नहीं भोगी, दुख आते थे लेकिन वे दो चार मिनट में ही समाप्त हो जाते थे, और एक बार नहीं हजारों बार दुख आए और प्रत्येक बार जल्दी जल्दी समाप्त हो। मुहूर्त विपद गणात, कुंती महारानी कहती हैं कि आप विपद गणात, विपद के समूह से मेरी रक्षा किए। बारंबार विपत्तियां आई और अति शीघ्र आपने रक्षा कर दिए। मतलब आप जिस माता के गर्भ से जन्म लिए हैं उसके दुख को आप इतना जल्दी दूर नहीं कर पाए, और वो भी केवल एक बार किए। जो दूसरी विशेषता है कि वह सुचार पिता रही, सुचार पिता मतलब शोक से व्याप्त रही, मैं कभी भी शोक में नहीं रही। यदि मुझ पर बहुत विपत्ति आई लेकिन विपद हारी आपने इतना सिद्ध मेरी विपत्ति दूर कर दिया, मुझे कभी कोई शोक नहीं हुआ। और दूसरी विशेषता है कि सहात्मजा, आत्मजय सहिता, आपने मेरी रक्षा की और मेरे पुत्रों के साथ रक्षा की। देवकी की आपने एक बार रक्षा की लेकिन उसके पुत्रों की रक्षा आपने नहीं किया, इससे आपका बहुत अधिक स्नेह मेरे प्रति प्रकट होता है। कुंती महारानी के पुत्रों पर बहुत विपत्ति आई लेकिन उनका बाल बंका नहीं हुआ, और देवकी के पुत्र कारागृह में ही मारे जा रहे थे। क्या भगवान उन्हें नहीं बचा सकते थे? कुंती जी विचार कर रही हैं कि यह अवश्य ही सिद्ध कर रहा है कि आपका प्रेम मुझ पर अधिक है। यह है एक भक्त का अनुभव, भगवान के हृदय में बसने वाले स्नेह को वह समझ रही है। देवकी और कुंती दोनों दुख में डाली गई, और दोनों को दुख में डालने वाले अपने परिवार के लोग थे, बाहरी आदमी नहीं था। कुंती का विवाह हस्तिनापुर में हुआ था, और जब अपने पति का देहांत हो गया तो अपना परिवार ही कुंती के लिए सबसे भारी दुखद हो गया। अपना परिवार मतलब अपने जेठ थे धृतराष्ट्र महाराज और उनके सौ पुत्र थे, ये सब कुंती के विरुद्ध थे, कुंती के पुत्रों का वध करना चाहते थे किसी भी उपाय से, जैसे भी हो सके पांडवों का नाम निशान मिटाना चाहते थे इस धरती से। और अनेक विपत्ति डाले, अनेक संकट डाले, लेकिन सब में भगवान ने बचा दिया। यह जगत ऐसा है कि यहाँ किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह मेरा बंधु है या मेरा भाई है या है वह है। थोड़ा सा स्वार्थ टकराया तो कभी भी महासंकट में डाल सकता है। विश्वास नहीं किया जा सकता है कि ये मेरे परिवार का है, मेरे संघ का है। यहाँ थोड़ी थोड़ी बात के लिए आदमी बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। और देवकी ने क्या अपराध किया था, अथवा कुंती ने क्या अपराध किया था? कुछ भी नहीं। कुंती का बस यही अपराध था कि वह सम्राट की पत्नी थी और इसके पुत्र राज्य के अधिकारी थे, बस। यदि जीवित रहते तो सब जगह प्रचार होता है कि ये सम्राट के पुत्र हैं इसलिए इनको राज्य देना पड़ेगा, अतः इन्हें खत्म कर दो जिससे हमें राज्य न देना पड़े। तो कुंती ने धर्म पूर्वक अपने पति की आज्ञा से पुत्र प्राप्त किया, और जब वह पुत्रों के साथ वन से लौटी, ऋषि आश्रम से लौटी, जिस समय पांडु महाराज का देहांत हो गया तो वह अपने पुत्रों को लेकर के लौटी हस्तिनापुर, तो कोई नहीं स्वीकार कर रहा था कि ये पांडु के पुत्र हैं, क्योंकि सबको पता था कि इसको साप है, पांडु को साप था, उसको पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता था। ये कौरव पक्ष के लोग कहने लगे कि नहीं नहीं ये पांडु महाराज के पुत्र नहीं है, और खोलम खोला इस अबला का उपहास करते थे कि तुम्हारा अवैध संबंध किसी से, इससे इतने पुत्र प्राप्त हुए, ये संभव ही नहीं हो सकता है, ये कैसे पांडु के पुत्र है। तो वहां पर वेदव्यास देव ने साक्षी दिया और बहुत से ऋषियों ने आकर के कहा, धृतराष्ट्र को सबको समझाया कि ये महाराज पांडु के पुत्र है, तब वे लोग स्वीकार किए, उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो स्वीकार कर लिए, लेकिन अब बहुत खड़जंग तो चालू किए उनको मारने के लिए। देव तो बेचारी विधवा हो गई, अपने पति के विरह का दुख भोग रही थी, सम्राट की पत्नी होकर, और बच्चों पर प्रतिदिन विपत्ति थी, कुछ भी ठीक नहीं था, कब कहां मारा जाएगा, क्या उपाय किया जाएगा, और पूरी राज शक्ति विरुद्ध थी कुंती के, लेकिन भगवान ने सब जगह बचाया। तो अपना परिवार बैरी था कुंती के लिए, और देवकी के लिए अपना भाई बैरी था। देखिए दोनों स्त्रियां संकट में डाली गई, एक अपने नैहर के एक व्यक्ति द्वारा, कंस द्वारा संकट में डाली गई, और देवकी का क्या अपराध था, देवकी का एक कहीं बहुत बड़ा अपराध था कि उसके गर्भ से भगवान का अवतार होने वाला था, बस यही अपराध। अगर उसके गर्भ से कोई खल जन्म लेता, दुष्ट आता, तो कंस को इससे कोई मतलब नहीं था, देवकी को जीवित छोड़ देता, भगवान इसके गर्भ से आ रहा है इसलिए इसको मारो। और किस दिन देवकी विपत में डाली गई, जिस दिन उसका विवाह हुआ, कुंती का जिस दिन विवाह हुआ उस दिन वो संकट में नहीं डाली गई, वो बहुत काल तक राजर्षि की पत्नी रही, सुख से रही, लेकिन देवकी एक दिन भी ससुराल में नहीं अपने घर गई विवाह होने के बाद, उसे राजपथ से ही कारागृह में डाल दिया गया। वो गई थी एक साल के लिए, कंस छोड़ दिया था, लेकिन जब पहला पुत्र हुआ तो उस समय कंस पुत्र का भी वध किया और देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया उस समय से। लेकिन विवाह के प्रथम दिन ही कंस उसकी चोटी पकड़ करके और दाहिने हाथ में तलवार लेकर के उसका गला काटना चाहता था, तो वसुदेव जी की बुद्धि थी, उन्होंने किसी तरह से उसको राजी किया, समझाया, तब वह माना, परंतु उस समय तो मान गया, परंतु बाद में देवकी को और वसुदेव को दोनों को कारागृह में बंद किया। तो यहां कुंती महारानी कह रही है, कंसे न अति चिरम रुद्धा, रुद्धा अवरुद्धा हो, बहुत काल तक शोक में डूबी रहे। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इस संसार में भरोसा नहीं करना चाहिए, अरे हमारा परिवार है बहुत अच्छा है, हमको सहारा दे रहा है, तो कृष्ण के अलावा कोई अपना नहीं है वास्तव में, कभी भी कोई विरुद्ध हो सकता है, और देखा गया है कि इस संसार में भाई से बढ़ करके कोई दूसरा दुश्मन नहीं होता है, और भाई जैसा ऐसे मित्र भी नहीं होता है, भाई अनुकूल हो तो बहुत बड़ा मित्र है, और नहीं प्रतिकूल हुआ तो सबसे बड़ा दाहक अग्नि वही हो जाता, ये सबका देखा हुआ विषय, बड़े बड़े जो दुख हुए हमें अपने स्वजनों से हुए, देवकी को दुख हुआ अपने भाई से, कोई बेचारी अपराध नहीं की थी, कोई पहले से अपराध नहीं था, अगर अपराध होता तो कंस रथ नहीं हाँकता, वो सारथी को हटाकर, ड्राइवर को हटा करके स्नेह बस रथ हाँक रहा था, लेकिन जब ही सुना कि इसके गर्भ से विष्णु आएगा, बस स्नेह समाप्त हो गया, इस तरह से देवकी भी दुख में डाली गई थी और कुंती भी दुख में डाली गई थी। कुंती विचार करके देख रही है कि मेरी भाभी कितना दुख में डाली गई, कृष्ण की जननी कृष्ण की माता कितना काल तक दुखनी रही, लेकिन मुझे कृष्ण दुख का मुख नहीं दिखाए, मेरी विपत्ति हमेशा जल्दी जल्दी दूर करते रहे। अति चिरम रुद्ध तो विमोचिता अहम, मैं रक्षिता हुई, मुझको छुड़ाए विपत्ति से सहात्मजा। और त्वयैव नाथेन, आपने मुझे मुक्त किया विपत्तियों से, दुख से छुड़ाया जल्दी जल्दी। मुह और विपद गणात, हजारों विपत्तियों से और मुह जल्दी जल्दी, हम मुह का अर्थ शीघ्र शीघ्र, बारंबार विपत्तियां आई और आपने अति शीघ्र मुक्त कर दिया, जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरा, बहुत भारी विपत्ति थी अपने स्वजन पर, कुल वधु का अपमान हो रहा था उस असत सभा में, जिसे कुंती महारानी यहां असत सभा कहती, दुष्टों की सभा, लेकिन क्षण भर में कृष्ण ने रक्षा कर लिया। करोड़ों गज करोड़ों मीटर साड़ी बढ़ गई, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन गाज फेंक कर गिर गया साड़ी खींचते खींचते, लेकिन साड़ी का और छोर नहीं मिला, तो भगवान ने इस तरह रक्षा कर लिया। उसकी वे आगे याद कर रहे, क्यों रक्षा किया कथा बोल रही है, क्योंकि मैं अनाथिनी थी, मेरा रक्षक कोई नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि देवकी के समान मेरा आप में प्रेम है, देवकी का आप में जितना प्रेम है उसके सामने करोड़ों अंश भी मेरा प्रेम आप में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी एकमात्र योग्यता यह थी कि मैं दीन थी, और आप संबंध देख रहे थे कि मेरी बुआ अनाथनी है, विधवा है, कुछ भी हो देवकी दुख में थी, लेकिन उसके पति उसके साथ थे और उसके और स्वजन उसके विरुद्ध नहीं थे, केवल एक व्यक्ति विरुद्ध था, और हमारे तो सभी विरुद्ध थे, आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं था। देवकी के और लोग भी थे, जैसे अक्रूर जी थे, अक्रूर जी सर्वदा वसुदेव और देवकी की रक्षा का रक्षा के लिए बुद्धि लगाया करते थे, कई ऐसे अवसर आए कि कंस को उन्होंने समझा करके राजी कर लिया। यद्यपि और यादव सब भाग गए थे, अपने संबंधी कंस से बहुत भयभीत थे, लेकिन सब देवकी का हित चाहते थे और कोई विरोध नहीं था, ये कुंती का सारा समाज विरोधी था, ये सौ भाई दुर्योधन में विरोधी थे, उनके संबंधी विरोधी थे, और उधर केवल एक दो व्यक्ति थे जो हितैषी थे, जैसे विदुर जी, भीष्म पितामह आदि हितैषी थे, लेकिन बाहर से हितैषिता नहीं कर सकते थे, बल्कि दुर्योधन की बनाई हुई योजनाओं के साथ उन्हें चलना पड़ता था। महाभारत में कथा है कि जब पांडव अज्ञात वास कर रहे थे विराट नगर में, तो उनका पता लगाने के लिए और उनको पुनः 12 वर्ष का वनवास देने के लिए कौरव लोग खोज रहे थे उनको, तो उसमें भीष्म पितामह भी आए थे, द्रोणाचार्य भी आए थे, इस तरह से लोग करते थे। तो वास्तविक हितैषी एक ही व्यक्ति थे, विदुर जी, बहुत बुद्धिमानी पूर्वक वे पांडवों की सहायता कर रहे थे। इसी से महाराज युधिष्ठिर याद करते हैं अपने चाचा की, विदुर जी की, तो कहते हैं कि चाचा जी आपने हम लोगों के वजह से ही रक्षा किया था, जैसे पक्षी पंख की छाया करके हमारी रक्षा अपने अंडे की रक्षा करते हैं। तो विदुर जी भगवान कृष्ण के भक्त थे, और विदुर जी को भगवान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप इनकी रक्षा करते रहिएगा। तो विदुर जी थे, भगवान थे, कुंती समझ रही है कि मैं अनाथनी थी, मेरे नाथ केवल आप थे। प्राय स्त्री के लिए पति के बदले नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस स्त्री के पति जीवित है उसको सनाथ कहते हैं, सनाथिनी है, लेकिन जिसका पति नहीं है वो अनाथ है। कुंती ने कभी नहीं फील किया, कभी नहीं अनुभव किया कि मैं अनाथ, क्योंकि हमारे वास्तविक नाथ श्री कृष्ण, श्रीनाथ जी वास्तविक नाथ, वो समझ गए थे जीवन में इस सत्य को, वो जान चुके थे कि कृष्ण हमारे नाथ है, हमारे सब कुछ। त्वया एव नाथेन, त्वया एव, एव शब्द यह बता रहा है कि मेरे रक्षक आपके अतिरिक्त और कोई नहीं था। तो शायद आपने देवकी की रक्षा इसलिए नहीं किया कि देवकी के नाथ उसके साथ थे, देवकी का परिवार उसके फेवर में था, साथ में था, लेकिन मैं सब तरह से दुखनी थी, अनाथनी थी, दीना थी। हे दीन बंधु, आपने इस दीन बंधुता के कारण मुझसे प्रेम किया और मुझे बचाया, मुझमें कोई गुण नहीं, मैं देवकी के समान सौभाग्यवती नहीं हूँ। जिसके उदर में आप आए, जिसके छाती का दूध पिए, वह स्त्री निश्चित ही हमसे कोटि गुना अधिक भाग्यवती है, लेकिन फिर भी मैं अनाथिनी थी, अतः आपने मेरे साथ स्नेह किया। यह है भगवान कृष्ण के साथ भक्तों का संबंध और उसके अनुसार अनुभव। प्रत्येक भक्त अप्राकृत जगत में यही अनुभव करता है कि भगवान सबसे अधिक स्नेह मेरे साथ करते हैं, यह अनुभव होता है। कुंती महारानी स्पष्ट अपने पुत्रों के साथ कह रहे हैं कि आप अपने माँ से भी अधिक स्नेह मुझसे किए, और वास्तव में इसमें संदेह नहीं है। यदि लीलाओं को पढ़ करके हम देखें तो कुंती के साथ जितना भगवान ने प्रेम किया उतना देवकी से नहीं किया, परंतु देवकी के गर्भ में वे आए, अब इससे बढ़ करके सौभाग्यवती नारी दूसरी देवकी से हो नहीं सकती। आज भी देवकी नंदन कहा जाता है, देवकी पुत्र कहा जाता है कृष्ण को, पर और लीलाओं में विचार कीजिए तो जितना वे कुंती से स्नेह किए उतना देवकी से नहीं। जानते थे कि उसका रक्षक कोई नहीं, मैं हूं, और इसीलिए बारंबार रक्षा की। तो विपत्तियों को गिना रही हैं। विशान महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छतः मृदे मृदेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यास्ततश्चास्म हरेभिरक्षितः। विषात्, विषात् मतलब विष से, भीम को विष दिया गया था। पांचों पांडवों में भीमसेन बहुत बलवान थे, तो सभी कौरव जलते थे उनसे। तो एक बार कौरवों ने आपस में मंत्रणा करके भीम को मारने का उपाय किया। वे लोग कहे कि चले हम लोग गंगा जी के तट पर और वहां प्रीति भोज करेंगे। रोज तो अपने भवन में खाते ही हैं, अब थोड़ा वन में चले गंगा जी के किनारे प्रीति भोज पिकनिक करने के लिए गए। तो कपट से ये लोग वहां पर हलाहल विष डाले भोजन में, और योजना थी कि भीम को खिलाया जाएगा। तो वे लोग भीम को खाने के लिए दिए और भीम खाए। जब ही वे भोजन किए तब ही बिल्कुल विशुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए, और अंत में उनको मरा हुआ समझकर कौरव उन्हें गंगा जी में फेंक करके और घर चले आए। और अन्य जो चार भाई थे भीमसेन के, युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव, ये लोग बहुत विलाप करने लगे, और यह बहाना किया गया कि भीमसेन डूब गए, पानी में डूब गए, तैरने में थक करके डूब गए। वास्तव में विष के कारण डूबे, लेकिन इधर हल्ला किया गया कि वो डूब गए पानी में, गंगा जी में डूब गए। पूरा जो अपने संबंधी हितैषी थे वे लोग रो रहे थे, और जो दुश्मन थे वे भी नकली रूप से रो रहे थे, वे भी हाहाकार कर रहे थे झूठ मूठ। धृतराष्ट्र को तो बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन वो भी विलाप कर रहा था, हाय हाय भी मर गया। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भीमसेन गंगा जी के दह में डूबे, और डूबे डूबे वे पाताल लोक चले गए, सर्पों के लोक में चले गए। तो वहां सर्पों ने उनको काटना चालू किया चारों तरफ से। विषस्य विषमौषधम, विष की दवा विष है, ये बिल्कुल बेहोश हो गए थे। जब सर्पों ने काटना चालू किया तो उनको थोड़ी थोड़ी चेतना आने लगी, और चेतना आई तो सांपों को पकड़ करके ही सांपों को मारने लगे, बलवान थे ही। एक सांप को पकड़ करके था दूसरे सांपों को मारने लगे, वे सब भागे और जाकर के सर्पराज वासुकी जी से कहे कि एक अद्भुत मनुष्य आया है। अद्भुत मनुष्य की जब हम लोग उसको काटते हैं डसते हैं तो वो और अधिक जी गया, पहले बेहोश था और जब हम लोग काटे तो जी गया, और सभी सर्पों को मार रहा है, उसके आगे हम लोगों की कोई शक्ति काम नहीं कर रही। तो वासुकी जी बलवान सर्पों को भेजे कि जाओ उसको पकड़ कर लाओ। कुछ बलवान सर्प गए और अपने देह में लपेट करके भीमसेन को लाए, हाजिर किए वासुकी जी सर्पराज। तो वासुकी जी ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो भीमसेन ने बताया कि मैं महाराज पांडु का दूसरा पुत्र हूं, मेरी मां कुंती है। तो संजोग बस वासुकी जी के साथ ही भीमसेन के नाना जी रहते थे। भीमसेन के नाना जी सूरसेन थे, बसुदेव जी के पिताजी, और उनके नाना जी रहते थे वहां पाताल लोक में। उन्होंने जब सुना तो उनका बहुत स्नेह उमड़ा कि हमारे नाती का नाती आया है। तो उन्होंने वासुकी जी से कहा कि अरे ये तो हमारा संबंधी है, इसका स्वागत होना चाहिए। तो वासुकी जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा क्या स्वागत होना चाहिए? तो उस लोक में, नाग लोक में अमृत रहता है जिसको पीने से आदमी का बहुत बड़ा बल बढ़ जाता है। भीमसेन के नाना जी ने कहा कि इसको रस पिला दिया जाए बल बढ़ाने के लिए, अमृत। तब वासुकी जी ने कहा ठीक है। तो पहले भीमसेन को एक आध लोटा पीने को दिया गया, तो कहा गया क्या और पियोगे? तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत पी सकता। तब एक कुंड में, एक हौदा में रखा हुआ रस उनको पिलाया गया, एक कुंड का, जिसको पीने से एक हजार हाथी का बल बढ़ता था एक हौदा को पीने से। तो इस तरह से भीमसेन 8 हौदा का रस पी गए, 8000 हाथी का बल बढ़ गया, और 2000 हाथी का बल तो इनमें पहले से नहीं था। तो इस तरह से 10000 हाथी का बल बढ़ गया और शरीर सोना की तरह चमकने लगा, पहले की अपेक्षा और गठीला, तेजस्वी, सुंदर हो गए। यह देखिए कृष्ण की इच्छा। और इसके बाद सोने के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया, रत्नों से, और वासुकी जी ने व्यवस्था किया कि इसको हस्तिनापुर पहुंचा दो। तो गंगा जी की जिस धारा से डूबे तो उसी धारा से उनको ऊपर लाया गया, और ला करके वहीं निकले तह में से जहां डूबे थे, वहीं से निकले और घूम करके घर आ गए। सब लोग देखे तो कुछ लोग तो बहुत आनंदित हुए, अरे भीमसेन आ गए, डूब करके भी आ गए। और वो लोग देखे तो देवताओं से भी अधिक सुंदर शरीर भीमसेन का हो गया। तो कौरव तो मर गए कि ये क्या हुआ, ये डूबा था मरा था कैसे आ गया। कुंती महारानी याद कर रही है, विषाद, आपने उस भयंकर हलाहल विष से रक्षा किया, विषाद महाग्नि और महाअग्नि से, लक्षा भवन की आग से आपने रक्षा किया। एक बार धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के कहने से एक ऐसे भवन का निर्माण कराया जो लक्षा से बना हुआ था, जिसको अग्नि का रूप देने में एक दिया सलाई मारना पर्याप्त था। एक जगह आग पकड़ती तो भव से सारा राजभवन आग की चपेट में आ जाता। बहुत दुर्भिसंधि से कपट से भवन बनाया गया था, लेकिन कौरव इतने अज्ञ थे कि उस भवन को बनवाने में वे विदुर जी से भी सलाह लिए थे। विदुर जी को जिम्मेवारी दे दिए थे कि आप इस भवन को बनवाइए। वे नहीं समझते थे कि विदुर जी कितना पक्षपाती हैं पांडवों के। तो भवन बनाया गया, लेकिन उस भवन के हाल से एक सुरंग बनवाया विदुर जी ने, सुरंग टनल जो जंगल में निकलता था उसका सिरा उन्होंने बनवाया था। वो जानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, सब समझते थे कि क्यों भवन बनाया जा रहा। तो राजभवन बनाया गया, जैसे हस्तिनापुर का राजभवन था उतना ही सुंदर भवन बनाया गया। और एक दिन धृतराष्ट्र ने कहा महाराज युधिष्ठिर से, बेटा देखो तुम लोग भी राजा के पुत्र हो और दुर्योधन आदि तो अंध राजा के पुत्र हैं ही, तुम लोग इतना कंजस्टेड स्थान में रह रहे वो ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत सुंदर राजभवन में बनवा दिया हूं, वहां फ्री जीवन बिताओ, वहां आनंद से रहो। यह जान तो हमारे 100 पुत्र ऐसे ही हैं और तुम लोग राजा के बेटा हो, इसलिए यहां दुख भोग रहे हो। वहां बहुत सुंदर भवन बना दिया गया है, वहां जाकर के रहो। और आशा यह था कि किसी दिन असावधान होकर सोए रहेंगे तो आग लगा दी जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। यही उद्देश्य तुम्हारे युधिष्ठिर का स्वभाव था कि वे बड़ों की आज्ञा कभी नहीं टालते थे।
यहाँ दुख भोग रहे हो, वहाँ बहुत सुंदर भवन बना दिया गया है, वहाँ जाकर के रहो।
और आशा यह था कि जिस किसी दिन असावधान होकर सोए रहेंगे तो आग लगा दी जाएगी, जलकर राख हो जाएगा। यही उद्देश्य तुम्हारे युधिष्ठिर का स्वभाव था कि वे बड़ों की आज्ञा कभी नहीं टालते थे। उन्होंने कहा ठीक है पिताश्री, जैसे आप जानते। जिस समय विदुर जी, जिस समय महाराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बातों का अनुमोदन कर रहे थे कि ठीक है हम जाएंगे, तो विदुर जी म्लेच्छ भाषा में कुछ बोले, इंग्लिश में बोले होंगे, म्लेच्छ भाषा शब्द का प्रयोग है वहां। महाभारत में म्लेच्छ भाषा शब्द, और म्लेच्छ भाषा का क्या अर्थ है तो म्लेच्छों की भाषा, यही अर्थ होगा ना। जो भी हो कौन भाषा थी पता नहीं, पता नहीं फारसी में बोले, किसमें बोले, कुछ किसी भाषा में बोले, जिसको म्लेच्छ भाषा कहा गया। उन्होंने स्पष्ट बोला और सब लोग सुन रहे थे और लोग नहीं समझे। उन्होंने कहा कि जो युधिष्ठिर जब जंगल में आग लगती है तो जो चूहे होते हैं जंगल में वे दूसरे तरफ नौका करके द्वार करके भाग जाते हैं, जल नहीं पाते। तो उन्होंने संकेत किया और महाराज युधिष्ठिर पूरा समझ गए। वे समझ गए कि हमको भूंजने के लिए भेजा जा रहा है, किसी दिन आग लगाई जाएगी, लेकिन चाचा जी ने व्यवस्था कर दिया है, हम निकलकर भाग जाएंगे। वो समझ गए पूरा, लेकिन अपने भाइयों से बताए नहीं। वो चले गए खुशी खुशी। एक दिन पांचों भाई बैठे हुए थे अपनी माँ के साथ, कुंती के साथ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन से, देखो भैया, इस घर में जो हम लोगों को भेजा गया है यह जलाकर राख करने के लिए भेजा गया, हमारी सुख सुविधा के लिए हमें नहीं भेजा गया है, किसी दिन हमें जलना है। तो प्रतिदिन एक भाई जगा रहता था और इस कारण से कौरवों को कोई अवसर नहीं मिला आग लगाने का। महाराज युधिष्ठिर बहुत सजग, एक भाई हमेशा जगे रहते थे रात भर, और दिन में तो कोई भय नहीं था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने एक दिन भीमसेन से कहा कि हम लोग कितना दिन जगे जगे बिताएंगे, इस घर में आग लगाओ फूंक करके और चलें सुरंग से। जानते तो वो एक दिन फूंकेंगे जलाएंगे तो हम ही इस घर को फूंक करके चल दें। तो पांचों भाई घर से बाहर निकले, इसके बाद भीमसेन पूरा घर में आग लगाए। तो अकस्मात दैव जो कहा जाएगा कि बरामदे में एक भीलनी अपने पांच पुत्रों के साथ आकर सोई थी, बेचारी अब नाहक था, उसका कर्म रहा होगा, वो उसमें जल गई और उसके पांचों बेटा भी जल गए। और सुरंग से महाराज युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल सहदेव को और माता कुंती को लेकर भीम से निकल गए, अकेले सबको टांगे, दो भाई को कंधे पर टांगे थे और दो भाई को हाथ से पकड़े थे और माता को पीठ पर चढ़ाए थे, वे चल दिए रातों रात चले गए दूर जंगल में निकले। और सवेरे वो तो रात में ही पता चल गया होगा, आग लगी होगी तो पूरा सिटी देख रहा होगा कि लक्षा भवन जल गया जल गया जल गया, राजभवन जल गया। लक्षा भवन तो हम कह रहे हैं, वे लोग तो बहुत सुंदर नाम रखे होंगे, ये भवन जल गया जल गया जल गया जल गया। और लोग दौड़े दौड़े आए और सवेरा होते होते लोगों ने वो पांच लाश भी पाया, छह लाश पाए। लाश को देखा गया था, एक स्त्री की लाश थी और पांच पुरुष की। तो अब इसमें कोई संदेह ही नहीं रहा कि पांडव जल गए। जब भीष्म पितामह रोने लगे, विदुर जी तो केवल ऊपर से रो रहे थे, बाकी धृतराष्ट्र भी रोने लगे, उनका भी चित्त दुखी होगा कि हाय हाय क्या हुआ जल गए। सारा समाज रो रहा था, कौरव भी झूठ मूठ के रो रहे थे। और द्वारका में यह संवाद गया भगवान कृष्ण के पास कि आपके फुफेरे भाई जलकर राख हो गए आपकी बुआ के साथ। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रोते हुए हस्तिनापुर आए, यद्यपि भगवान सब जानते थे, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, वे जानते थे कि वे जले नहीं, लेकिन फिर भी लोक रीति से अभी रोते आ रहे थे रोते आ रहे थे। रोते हुए आए और यहाँ हस्तिनापुर में अन्येष्टि संस्कार काम क्रिया सब हो गए, उसमें भगवान भाग भी लिए थे और गुण गा गा करके रोते थे, हाय मेरी बुआ मैं तुमसे भेंट नहीं कर सका ऐसे ऐसे, या अर्जुन का नाम रखकर रोते थे, युधिष्ठिर का नाम रखकर रोते थे दोनों भाई। पांडव निकले उस लक्षा भवन की आग से, तो जलना था। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र ने जलाया नहीं पांडवों को, लेकिन जलाने का पाप उस पर लग गया। घर में आग लगाया था भीमसेन ने, लेकिन अंततः आशय के अनुसार सब कुछ चलता है। मान लीजिए कोई चोर या हत्यारा किसी को मारे और अपने भाग्य से वो व्यक्ति बच गया, तो जज मारने वाले को बहुत कड़ी सजा देगा, उसका इंटेंशन देखता है, इसके मन में क्या था। और कोई किसी को बचाना चाहता है, रियली मारना नहीं चाहता है, और अनजान से उसके आघात से वो मर जाए, तो उसको सजा नहीं होती, इंटेंशन देखा जाता है मुख्य रूप से। तो कर्म बंधन लग गया धृतराष्ट्र पर, पांडवों को जलाने का पाप लग गया उस पर। तो पांडव निकले उस भवन से, तो एक ब्राह्मण के यहां वे लोग रहने लगे। एक ब्राह्मण, एक चक्रा नगरी थी, तो ब्राह्मण के वेश में वे दोनों वे पांचों भाई रहने लगे और कुंती महारानी एक ब्राह्मणी के वेश में रहने लगे। और वहां वो ब्राह्मण नहीं जानते थे कि हस्तिनापुर के राजा हैं, ये हैं वो हैं। और पांडव इसलिए छिप गए कि पता न लगे कि ये लोग जीवित हैं। और उधर तो शोक छाया हुआ था, तो उस क्षेत्र में पुरुषाद दर्शना एक राक्षस की मुठभेड़ से भगवान ने रक्षा किया, इसकी व्याख्या कर रहा हूं। जिस ब्राह्मण के यहां रह रहे थे, तो उस गांव में और उस इलाके में एक राक्षस रहता था, बहुत बलवान था, और उसने वो आदमियों को मारा करता था, खा जाता, सीधे आदमी को खा जाता था। तो कई गांव के लोग ने मिल करके मीटिंग किया कि भाई ऐसे आक्रमण करता है, खा जाता है, तो हम लोग बारी बारी से अपने घर से उसको आदमी और भोजन भेजा करें। उसको बुलाए सभा में, लोगों कहे कि सरकार हम लोग ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं, आप हमें मारा मत कीजिए, हम लोग साल में एक बार जिसका बारी पड़ेगा तो अपना एक स्वजन और भोजन आपको भेज देगा। तो उसने कहा ठीक है, हमें भोजन से मतलब। तो जब पांडव उस ब्राह्मण के घर में रहे थे तो उसकी बारी आ गई, उसके घर से एक आदमी को भेजना था, उस आदमी को भी खाएगा और घर का पूरा सामान भी खाएगा राक्षस। तो घर में लोग रोना चालू कर दिए। जो बच्चा था लड़का सयाना, वो पिताजी से कहता था कि मैं जाऊंगा, पिताजी कहते थे कि नहीं मैं जाऊंगा, और जो घर में माता जी थी वो रो रहे थे, अरे कोई जाए, चाहे पति जाए चाहे पुत्र जाए, एक को तो खाएगा ही, तो रोने लगी। कुंती महारानी ने सुन लिया उसका रोना और पूछने लगी कि बहन क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है। उसने जब बताया तब कुंती महारानी ने कहा नहीं कोई नहीं जाएगा, मैं अपने पुत्र को भेज रही हूं। वो ब्राह्मणी नहीं मान रहे थे, लेकिन कुंती जी ने कहा कि तुम्हारा तो एक ही बेटा है, हमारे तो पांच बेटे हैं, अगर एक बेटा मर भी जाएगा तो पांच चार रहेंगे मेरे पास, इसलिए मैं भेज रही हूं। और कुंती को पूरा विश्वास था कि भीमसेन उस राक्षस का वध कर देंगे। तो सब तरह से मना करके, और कुंती चूंकि अबलाइज थी, जिस घर में रह रहे थे खा रहे थे, तो स्वाभाविक धर्म था उस घर की विपत्ति में शरीक होना। तो उसने कहा कि बेटा तुम जाओ भीमसेन को ले लो सामान जो बना हुआ है इस गांव में, पूरे गाड़ी पर बैलगाड़ी पर लाद करके जाना, तुम जाओ। और कुंती महारानी ने कहा कि तुम जाओ, तुमको खाएगा और ये भोजन भी दे देना। भीमसेन तैयार हो गए, कुंती महारानी के चरणों की वंदना किए और माता ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी रहो। तो अमोघ आशीर्वाद था, विजयी बनो। भीमसेन गए, वो राक्षस के पास पहुंचने में उन्हें बहुत विलंब हो गया, वो बहुत क्रोध में था। भोजन का टाइम हो गया है, लंच का टाइम, और अभी नहीं पहुंचा। बहुत क्रोध में था, कौन ऐसा शैतान आज आ रहा है, उसको बुद्धि नहीं है। तो भीमसेन आ रहे थे बैलगाड़ी पर, तो उसने देखा कि वो सारा सामान खाते हुए आ रहा है, बीच रास्ते में वो सारा खत्म कर चुके थे सामान। तो इसको देख करके उसका क्रोध और बढ़ गया कि अद्भुत मनुष्य, और आते ही गाली देना चालू किया, मारने की धमकी दिया, और लेकिन भीमसेन भीड़ गए उससे, और अंत में उसका वध कर दिया। तो पुरुषाद का अर्थ है पुरुष को खाने वाले राक्षसों की मुठभेड़ से आपने मेरी रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की, तो भीमसेन की रक्षा, और उस क्षेत्र का विपद सदा के लिए दूर हो गया। फिर भी अभी ये ब्राह्मण के वेश नहीं रहते थे और अब दूसरी जगह चले गए, जब प्रसिद्धि हो गई कि बहुत बलवान ब्राह्मण है इस क्षेत्र में उनके घर, तो इस प्रसिद्धि के डर से फिर ये लोग स्थानांतरण कर दिए, दूसरे स्थान पर चले गए। जाते जाते पंजाब की तरफ बढ़ गए, महाराज द्रुपद की राजधानी की तरफ। वहां उन्हें पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है, भगवान वेदव्यास देव ने यह सूचना दिया पांडवों को, और कुंती से स्पेशल उन्होंने कहा कि अपने पुत्रों को भेज दो कंपटीशन में भाग लेने के लिए। तो सीलिंग में एक चक्र बनाया गया था, उस चक्र में मछली घूम रही थी, बनावटी मछली बहुत जोर से, और उसका प्रतिबिंब जल में नीचे पड़ रहा था, और नीचे देख करके और मछली के आंख में बाण मारना था। तो विश्व से बड़े बड़े राजकुमार आए थे, क्योंकि द्रौपदी का जस सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ था, वह परम सुंदरी थी, परम गुणवती, इसलिए उसका पाणिग्रहण करने के लिए सभी राजकुमार ललायत। तो हस्तिनापुर से पूरा दल गया था वहां, दुर्योधन कर्ण और सब लोग वहां पहुंचे थे, पूरा दल गया था, और पृथ्वी से अनेक राजा आए थे, और द्वारका से भगवान कृष्ण भी आए थे, बलराम जी भी आए थे वहां,
है तो कंपटीशन में भाग लेने नहीं आए थे, लेकिन द्रुपद महाराज एक राजा थे इसलिए आए थे फेस्टिवल में भाग लेने के लिए। तो सब लोग भाग लिए, अर्जुन बैठे, युधिष्ठिर महाराज बैठे, सब लोग बैठे थे, भगवान कृष्ण भी कुछ दूर पर बैठे थे। तो भगवान कृष्ण बारंबार पांडवों की तरफ देख रहे थे, जो ब्राह्मण के वेश में थे। भगवान श्रीकृष्ण बलराम जी से बातचीत कर रहे थे, देखिए भैया वो व्यक्ति हमारे युधिष्ठिर भैया जैसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे युधिष्ठिर हो, है कि नहीं? तो बलराम जी भी कहते थे एकदम ऐसा लग रहा है। इस तरह से लीला कर रहे थे, जान रहे थे कि युधिष्ठिर है। और अर्जुन को देखकर भगवान का देखो मेरे जैसे सांवले हैं वो, अर्जुन जैसे एकदम पता नहीं कैसे एकदम अर्जुन जैसे लग रहे हैं, नकुल जैसे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। बलराम जी अनुमोदन कर रहे थे कि हाँ ठीक कहते हो, एकदम वैसे लग रहे हैं। तब में कंपटीशन हुआ तो कुछ लोग तो धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाए, धनुष नहीं उठा पाए, फिर वो उस पर बाण क्या चढ़ाएंगे, धनुष से उठाना कठिन हो गया, डोरी चढ़ाना कठिन हो गया। कितने लोग धनुष की नोक में डोरी चढ़ाना चाहते थे, इतना जोर से वो मारा कि उनकी नाक टूट गई और मुंह टूट गया, गए पूरा विवाह हो गया, चले गए बैठ। लिखा गया है महाभारत में कितने लोगों के अंग भंग हो गए, कुछ मूर्छित होकर अस्पताल गए। अंत में कर्ण उठा, कर्ण चला, तो उसे कंपटीशन में पहले से सूचना थी कि इसमें केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण भाग ले सकते हैं। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी भाग ले ले, जैसे कहीं कोई नौकरी प्राप्त करनी है, इंटरव्यू है, तो उसमें क्वालिफिकेशन कहा जाता है कि इतना जो पढ़ा हो वही भाग लेगा, है ना? इसका एक अर्थ नहीं कि भेड़ चराने वाला ही जाकर के बस कंपटीशन में बैठ जाए। उसका कुछ मापदंड होता है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कंपटीशन में भाग लेगा, तो उसमें लिखा केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण भाग ले सकते हैं। तो जब कर्ण चला, द्रौपदी खड़ी थी वरमाला लेकर के, उसने पूछा कि यह व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, किस कुल का है? तो पता लगा कि यह शूद्र कुल का है, अधीरथ का पुत्र। द्रौपदी ने कह दिया कि एक भाग नहीं ले सकता है। उस कन्या को अधिकार था यह कहने का, और किसी ने नहीं कहा, उसने कहा कि नहीं ये भाग नहीं ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं कर्ण लक्ष्य भेद कर दिया होता, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं किया होता। तो अंत में अर्जुन उठे, तो अर्जुन तो ब्राह्मण के वेश में थे ही, तो किसी को संदेह नहीं हुआ, वो शरीर देख करके सब कुछ देख करके और ठीक वे भाग लिए। तो उन्होंने लक्ष्य भेद कर दिया, लक्ष्य भेद कर दिया तो जितने भी बड़े बड़े राजा थे उन्होंने हंगामा मचाना चालू किया, ब्राह्मण के साथ राजकुमारी का विवाह नहीं हो सकता है, विवाह होगा किसी राजा के साथ, ये ब्राह्मण कंगाल, ये क्या करेगा राजकुमारी को लेकर। और फिर हंगामा होने लगा, आपस में झगड़ा होने लगा, ये वो बात विवाद होने लगा, नहीं ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं हो सकता है, होगा विवाह क्षत्रिय के साथ, क्षत्रिय तो प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाए, लक्ष्य भेद कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी बदमाश लोग आयन मौके पर बोलते ही हैं, वो चुप नहीं थे, झगड़ा होने की नौबत आ गई। तब अंत में धीरे धीरे पोल खुलने लगा, जब अर्जुन तैयार हो गए युद्ध करने के लिए वही धनुष उठाकर, तो उनके हाथों पर पड़ी हुई रगड़ को कुछ लोगों ने देखा, बाएं हाथ कलाई पर धनुष की डोरी खींचने, तो लोग समझ गए कि अरे ये तो क्षत्रिय है। रंतमुग्ध घोषणा हुई कि ये युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन है, ये महाराज पांडु के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं। अब इतना सुनते ही सबकी हिम्मत पस्त हो गई, सब लोग शांत हो गए। भगवान कृष्ण आए, मिलने लगे युधिष्ठिर महाराज को, प्रणाम किए, फिर अर्जुन से मिले, भीमसेन से, ओ भैया आप जी गए, हम तो इतने दिन से शोक में डूबे हुए थे, ये थे वो थे, सब बंधु आपस में मिल रहे थे, भीष्म पितामह मिल रहे थे अपने पौत्रों से,
बहुत आनंद छा गया। जब यह पता लगा कि ये अर्जुन है तो महाराज द्रुपद के आनंद की सीमा नहीं रही, बहुत साज बाज के साथ आनंद से विवाह किया। वो आ रहे थे जब कुंती के पास लौटे, कुंती जी उस समय घर में थी, तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा माता को किवाड़ खोलने के लिए, माता किवाड़ खोलो, हम लोग आज एक अद्भुत उपहार लाए, हम लोग अद्भुत उपहार लाए हैं, तुमको देना चाहते हैं, मतलब दुल्हन लाए हैं। बाहर अनेक रथ खड़े थे, द्रुपद महाराज ने बहुत बहुत सामान दिया, तो हम बहुत उपहार लाए हैं अद्भुत। तो गए थे पांचों भाई अकेले, लेकिन छह बन करके आए। तो भीतर से कुंती महारानी ने कहा कि बेटा जो भी उपहार हो उसमें तुम लोग प्रेम से पांचों हिस्सा बांट करके खाना, मतलब उसका उपभोग करना, उसके साथ रहना। वो नहीं जानते थे कि कोई व्यक्ति है, वस्तु समझ रहे थे। मैं यही कामना करती हूं कि तुम पांचों का उसमें समान हक होना चाहिए, जो भी उपहार तुम्हारे पास। अब बाद में वो खोल करके किवाड़ देखी तो ये दुल्हन है। वो प्रणाम की द्रौपदी जी कुंती महारानी, कुंती ने आशीर्वाद दिया सदा सुहागिन रहो, सौभाग्यवती रहो। तो कुंती महारानी विचार करने लगी तो मैं क्या कह दी, ये तो एक की वधु है, फिर पांचों की कैसे होगी। तो बाद में भगवान वेदव्यास देव ने आकर के समझाया कि यही होना था, यही निश्चित है, तुम्हारे मुख से जो निकला है वो दैव का विधान था, यह पांचों की पत्नी होगी। तो जब महाराज द्रुपद ससुर हो गए तो धृतराष्ट्र अपने आप पांडवों को बुलाए राजधानी में और उनको आधा राज्य दे दिया, अपने आप बुला करके भय के मारे। नहीं देने पर द्रुपद महाराज फिर एक्शन लेते, भय बस ने राज दे दिए पांडवों। जब राज दे दिए तो चूंकि धर्मराज हैं युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने खूब सुंदर शासन किया, राजसूय यज्ञ किया, दुनिया के समस्त राजाओं को परास्त किया उन्होंने, और द्रौपदी राजरानी बनी। तो द्रौपदी के इस उत्कर्ष को, महाराज युधिष्ठिर के इस उत्कर्ष को कौरव नहीं सह सके। तो फिर असत सभाया, फिर अब असत लोगों की सभा लगी, जुआ खेल करके उनका राज्य हड़पने के लिए और उनकी स्त्री को छीनने के लिए। एक्चुअली वास्तविक उद्देश्य था द्रौपदी को हड़पना लेना, लेकिन जुआ के बहाने करना चाहते थे। जुआ खेलते खेलते एक दिन ऐसा अवसर आया कि महाराज युधिष्ठिर को उन लोगों ने कहा कि अभी तो आपके पास बहुत बड़ा धन है, आप द्रौपदी को दाव पर रखिए, यदि आप जीत जाएंगे तो सारा धन आपका वापस हो जाएगा। तो जुआ का ऐसा नशा होता है, महाराज ने द्रौपदी को भी दाव पर रख दिया, और यही वे लोग चाहते थे कि द्रौपदी को छीन लिया जाए। तो हार गए, तो हारना ही था, जब शकुनी था तब जीतने का कोई सवाल नहीं था पांडवों का। तो असत सभा लगी थी, उसमें द्रौपदी को खींच करके लाया गया और स्पष्ट कहा दुर्योधन कि तुम क्यों इन लोगों के साथ रहती हो, तुम राजकुमारी हो और मेरे जैसे राजा के साथ तुमको रहना चाहिए, ऐसी घोषणा किया हो। और कर्ण भी कहा, जब वो कहने लगे कि क्या सभा में बुलाना ये धर्म है, वो पूछ रही थी मुझे क्यों इस तरह अपमानित किया जा रहा है, तो कर्ण कहा था, कारण कहा था कि तुम्हारे पांच पति हैं इसलिए तुम वेश्या हो, वेश्या को सभा में लाना कोई अनुचित काम नहीं। वह तो दुखी था इसलिए कहा, उसने जो कंपटीशन में भाग नहीं लेने दी, तो उसी समय कर्ण बहुत दुखी हो गया था। वो तो अर्जुन का भाई था, लेकिन क्या करे, इस तरह से अपमान हुआ था। लेकिन फिर भी वह एक अबला थी, वो जो कुछ भी बोल रहे थे तो उचित बोल रहे थे, उसको तो पता नहीं था कि तुम सूर्य के पुत्र हो या कुंती के बेटा हो, उसको पता नहीं था। तो द्रौपदी ने जो कुछ कहा था नीति के अनुसार कहा था, पर कर्ण यहां जो बोल रहा है यह असत है,
या दुष्टता कर रहा है। जब कर्ण का वध हो रहा था अंतिम समय, तो भगवान ने कहा था कि द्रौपदी को कटु वचन सुना रहा था, उसमें तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। धर्म की बात करते हो, यही मुख है ना जिस मुख से तुमने द्रौपदी का अपमान किया था। तो अर्जुन को कहते हैं भगवान, मारो मारो मारो, धर्माचार्य को मारो इसी समय। बहुत धर्म की बात करते हैं। कई बार भगवान कहते हैं सर तुम्हारा धर्म कहां सो रहा था। तो कर्ण इस तरह से बोला और कोई व्यक्ति वहां प्रतिकार नहीं किया, केवल एक व्यक्ति था जिसने खुल करके विरोध किया, वो था दुर्योधन का एक भाई, विकर्ण नाम था उसका। उसने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन भीष्म पितामह तक से पूछा गया, द्रौपदी ने पूछा क्या दादाजी ये धर्म हो रहा है, तो दादाजी कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, आप बताइए। और उसी द्रौपदी ने जब बाद में पूछा था बाण सज्जा पर अपने दादा से, जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आपको धर्म का ज्ञान नहीं था, और इस समय धारावाहिक धर्म पर आप प्रवचन कर रहे हैं, यह ज्ञान आपका कहां चला गया था। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी मति मलिन हो गई थी, भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैं उस समय कुछ कह नहीं सकता। साधु लोग ऐसा कहा करते हैं, इसलिए अन्न खाने में बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं का कोई धन मिले और स्वाहा स्वाहा करता जाए, कुछ भी मिलना चाहिए था। और कितना भी मात्रा में मिले, बस आने दो, कलेक्शन कलेक्शन कलेक्ट करने में देखना चाहिए कहीं जहर नहीं कलेक्शन में आ जाए, है ना। भैया पानी पी रहे हैं कहीं गिलास में जहर आ गया, पी करके मर गए, तब क्या होगा। बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं किस बात पर एक बात कह दिया, हाँ, भीष्म पितामह ने कहा कि मैं दुर्योधन का अन्न खाया, लेकिन जब बाण लगा और 58 दिन उपवास किया तब सारा वो अन्न निकल गया, अर्जुन के बाण ने मुझे शुद्ध कर दिया, अब मैं शुद्ध हूं। ऐसा तो ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, लेकिन इस सज्जनों का अनुभव भी एक प्रमाण होता है, महात्माओं लोग कहा करते हैं। तो इस प्रकार द्रौपदी का अपमान हो रहा था और दुशासन को कहा दुर्योधन ने, इसको नग्न करके मेरी जान पर बैठाओ। और महाभारत में लिखा गया है कि 20 लाख सोने के चेयर्स लगे हुए थे उस स्टेडियम में, और क्षत्रिय सब बैठे रह गए, कोई गए नहीं, देखना चाहते थे। उसमें से अधिकांश लोग देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब करें क्या, जाते तो दुर्योधन की निगाह में गिरते, जिसका राज उसकी दुहाई, और दुर्योधन को खुश करने के लिए लोग बैठे। तो उस सभा को कुंती महारानी असत सभा करे, गुंडों की सभा, खलों की सभा लगी हुई, और उस असत सभा से आपने हमारी रक्षा की। द्रौपदी की रक्षा हमारी रक्षा है, और इसके बाद दूसरी बार जुआ खेला गया। जब एक जुआ में हार गए थे द्रौपदी को और वस्त्र हरण नहीं हो सका, भूकंप हो गया क्या क्या, तब धृतराष्ट्र महाराज स्वयं राज लौटा दिए और द्रौपदी को मुक्त कर दिए। द्रौपदी को उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, जब वस्त्र हरण नहीं हो पाया तो धृतराष्ट्र महाराज डर गए, उन्होंने कहा बेटी वर मांगो, तो द्रौपदी ने यही वर मांगा, कहा कि हमारे पतियों को नहीं, पहले उसने एक वर मांगा कि हमारे ज्येष्ठ पति युधिष्ठिर महाराज को दासता से मुक्त कर दिया जाए। वो दास बन चुके थे, मुकुट उतार लिया गया था, चुपचाप बैठे थे पांचों भाई एक जगह। द्रौपदी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हमारे पति जो सम्राट रहे हैं उनको दासता से मुक्त कर दिया जाए। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, युधिष्ठिर को दासता से मुक्त किया जाए। दूसरा वर मांगने के लिए कहा तो द्रौपदी ने कहा कि हमारे चार पतियों को उनके हथियार के साथ दासता से मुक्त किया जाए, तो मुक्त कर दिया। तीसरा वरदान जब मांगने के लिए कहे धृतराष्ट्र, द्रौपदी ने कहा कि क्षत्रियों को केवल एक वर मांगने का अधिकार है, दो वर मांगने का अधिकार, मैं इसे अधिक नहीं मांगूंगी, जो कुछ भी लेना होगा हमारे पति ले लेंगे। मतलब वह बड़े गर्व के साथ बोले कि इनके हाथ में आयुध है तो फिर जो कुछ लेना होगा ये ले लेंगे, मैं भीख नहीं मांगूंगी। तो धृतराष्ट्र डर गए और इसलिए वे फिर राज्य लौट आती है सब। ये पांडव राज्य पाए और वे जा रहे थे, अभी इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे तब तक धृतराष्ट्र के पास वो आया दुर्योधन और लगा कहने कि आप उनका राज्य क्यों लौटा दिए, आपको पता है धन कमाने में कितना परिश्रम होता है, बैठे बैठे खा रहे हैं, आपको तो पता नहीं है, बस लौटा दिए, इतना मेहनत करके धन आया और बताइए दे दिए। वो कहता है दुर्योधन, पिताजी आपको पता है अगर प्रतिदिन धन का आगम न हो तो हिमालय जैसी राशि भी खर्च होने में देर नहीं लगती, कुछ न कुछ धन रोज आना चाहिए। और धन कमाने में मनुष्य को यह उचित है अनुचित है ये विचार नहीं करना चाहिए, धन की बहुत जरूरत है। जीते थे धन, भाग्य से जीते थे, अपने ये क्या किया। आपको चाहिए कि फिर युधिष्ठिर को जुआ के लिए कहें, आपकी आज्ञा वो मानेंगे। तब ये विदुर जी को भेजे, विदुर ये संजय को, किसको भेजे धृतराष्ट्र कि जाओ जाओ युधिष्ठिर को कह दो कि महाराज ने बुलाया। अभी वो लोग वहां पहुंचे थे तब तक खबर गई कि महाराज धृतराष्ट्र आपको बुलाए, तो फिर रथ पर चढ़ करके चारों भाई आए, द्रौपदी भी आई। क्या बात है पिताजी? तो बेटा ऐसी बात है कि राजा लोग जुआ खेला करते हैं, बच्चों की इच्छा है कि जुआ खेलो, इसी के लिए बुलाया था, अगर तुम्हें उचित लगे तो खेलो। तुमने कहा ठीक है। इस बार दाव पर क्या रखा गया कि जो पक्ष हारेगा वो 12 वर्ष तक वन में रहेगा और प्लस 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। विपक्ष पता लगाएगा कि मैं कहाँ है, अगर पता लग गया तो पुनः 12 वर्ष तक वनवास।
कहाँ है अगर पता लग गया तो पुनः 12 वर्ष तक वनवास। इनकी योजना थी कि हस्तिनापुर का मुख न देखें, फिर वन में ही इनकी जिंदगी बीत गई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, और हारना तो इनको था ही क्योंकि शकुनी था, और हारे नहीं थे ये, कपट से वे लोग हल्ला करने लगते थे, हार गए। सौ मुंह एक और एक मुंह भक्कू है, हमारे यहाँ एक कहावत कहते। अब पूरी सभा गुंडों की सभा थी, बदमाशों की, और जानते थे कि कपट कर रहा है, और जो ही कहता था शकुनी की जीत गए तो सब लोग ताली बजाते थे, जीत गए। तो क्या करे महाराज युधिष्ठिर, ठीक है जीत गए।
तब जाओ वन में, राज मुकुट त्याग करके राजकीय पोशाक छोड़ करके पांचों भाई अपनी पत्नी के साथ वन में गए, और माता कुंती रह गई विदुर जी के साथ, ये वन में गए। तो वनवास कृच्छत, कुंती महारानी याद कर रही कि वनवास के कठिनाइयों से आपने हमारी रक्षा की, वन में अनेक विपत्तियां आई, महाभारत में कुछ विपत्तियों का उल्लेख किया गया है, द्रौपदी चोरी चली गई वन में, भीमसेन को सांप पकड़ा ग्रसने के लिए, एक दिन तो पांचों पांडवों की जान जाने वाली थी, दुर्वासा जी पहुंचे थे 10,000 शिष्यों के साथ, कई ऐसे अवसर आए, लगा कि अब पांडव समाप्त हो जाएंगे, लेकिन
जब कृष्ण रक्षा करने वाले हैं तो समाप्त कैसे होते, तो उन सब की याद कर रहे कुंती वनवास कृष्ण वनवास के दुखों से। यदि दुर्वासा मुनि का उस दिन पेट नहीं भरा होता, नहा करके वे भूखे आश्रम पर लौटे होते तो पांडवों को ही खा गए होते, साप से राख कर दिए होते। भगवान आए द्रौपदी के पुकारने पर और मांगे पात्र को, अक्षय पात्र को, द्रौपदी दो भोजन दो भोजन दो भोजन दो। द्रौपदी ने कहा मैं तो खा चुकी हूँ, अब कुछ भी नहीं है। तो भगवान यहाँ तक कहते हैं कि द्रौपदी मुझे परिहास अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भूख से व्याकुल हूँ, जरूर बर्तन में कुछ होगा, लाओ लाओ लाओ। तो बर्तन लाई तो उसमें साग का एक पत्ता चिपका हुआ। भगवान ने कहा कि इससे तो सारा विश्व तृप्त हो सकता है। उसको खाए और खा करके डकार दिए, जिस लगा कृष्ण का पेट भर गया। और ऐसा करते ही मुनिमंडली का पेट पूरा तन गया। जो लोग स्नान कर रहे, स्नान करके अभिमर्षण मंत्र का जप कर रहे थे, एक दूसरे को देखने लगे, सोचते केवल मेरा ही पेट भरा है कि उसका भी भरा है, और वो देख रहा है केवल मेरा ही भरा है कि उसका भी भरा। तो सब लोगों का पेट तन गया और बहुत सुगंधित डकार आ रही थी, बहुत आकंठ भोजन हो गया, कंठ पर्यंत। तो लोग सब पूछे दुर्वासा जी से कि अकस्मात पेट क्यों भर गया, और दुर्वासा जी का भी भर गया था। वो तो त्रिकालदर्शी मुनि है, वो समझ गए कि हम असमय में आकर के युधिष्ठिर महाराज का भोजन, युधिष्ठिर महाराज से भोजन बनवाए, उनको तंग किए। यह कृष्ण की व्यवस्था है, ये वन में है और हम लोग 10,000 व्यक्ति आकर के इनसे भोजन के लिए हट किए, तो भोजन तो अब बर्बाद होगा। भोजन काहे को बना है कुछ भी, लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि अब तो भोजन बर्बाद होगा, नष्ट होगा, तो इस कारण से भगवान कृष्ण क्रोधित होंगे। एक बार मैं अम्बरीश को इस तरह तंग करने के कारण चक्र से जलाया गया था, और फिर चक्र आएगा, 10,000 लोगों का भोजन जब फेंका जाएगा तो कृष्ण निश्चित क्रोधित होंगे। अब क्या करें, उन्होंने पूछे जल्दी बताइए हम क्या करें। दुर्वासा जी ने कहा कि जिधर भी जिसको रास्ता मिले भाग जाओ यहाँ से, और एक दिशा में मत भागना, नहीं तो चक्र आकर खचखच खचखच काटना चालू करे। तो सब लोग भाग गए, कोई आकाश में उड़ा, कोई पाताल में धसा, कोई इधर उधर, सब भाग। महाभारत में इसी तरह से बातें लिखी गई, सब भाग गए। भगवान इसके बाद युधिष्ठिर महाराज से कहे कि बुलाइए बुलाइए मुनि समाज को, वो लोग प्रसाद पाले। युधिष्ठिर महाराज कहे कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है आकर के करेंगे क्या, वो जला देंगे, हम लोग भस्म कर देंगे। भोजन देने पर उनको क्रोध होता है, आज नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं बुलाइए बुलाइए उनको बुलाइए। महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन को भेजा कि जाइए बुला लाइए। भीमसेन गए तो वहां एक भी आदमी का पता नहीं, तट भींगा हुआ था, कपड़ा धोने का नहाने का सब चिन्ह बना हुआ। तो वहां नित्य निवास करने वाले मुनियों से पूछे, यहाँ साधु मंडली आई थी तो बताए कि हाँ हाँ अभी तो स्नान करके सब लोग चले गए। कहाँ चले गए, तो पता नहीं चारों दिशाओं में लोग उड़ रहे थे, जोग बल से चले गए इधर उधर, सब चले गए। बाद भीमसेन ने कहा कि महाराज वो तो सब चले गए। युधिष्ठिर महाराज से कहे महाराज सब चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज आप लोगों के जीवन पर बहुत खतरा था, आज आप लोगों को मरना था। लोग आए थे, भोजन नहीं मिला होता तो वो साप देते, और दुर्योधन के भेजे हुए वह आए थे, और उसी समय दुर्वासा जी ने दुर्योधन को साप दिया कि दुष्ट तुम वैष्णवों को सताने के लिए हमें भेजे थे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। उस तरह साप दुर्वासा जी ने साप दे दिया। वहीं इस घटना की याद अर्जुन विरह के समय कर रहे हैं, 15वें अध्याय भागवत में लिखा गया इस स्कंध। इस प्रकार भगवान ने वनवास के दुख से पांडवों की रक्षा किया। और मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र तो, और युद्ध युद्ध में अनेक महारथियों के महान अस्त्रों से आपने रक्षा किया, और द्रोणस्त्र पश्चाश्म हरे विरक्षिता, और द्रोणी के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तो अभी रक्षा की। इस तरह हमेशा हम पर विपत्ति आई और हमेशा आपने रक्षा किया। इस संसार में आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति पर यदि बहुत अधिक विपत्ति आने लगे बार बार तो स्वजन उसके छोड़ देते हैं, कहते क्या करें अब हम कितना साथ दें, है ना। कोई आदमी बहुत रोगी हो जाए तो दवा कराते कराते एक दिन माता पिता भी थक जाते हैं, कहते अब हम क्या करें, बल्कि वो मनाने लगते हैं कि अब मर जाता तो ठीक होता है। वह बूढ़े लोगों के लिए तो लोग मनाने लगते हैं कि अभी मर जाते तो अच्छा होता, और यह कहो कि तुम्हारा घर गंदा हो रहा है इसलिए अच्छा होता कि, तो कहते ना ये दुख में है, राम जी इनका सुन लेते तो अच्छा होता। अभी मनाने स्नेह कम हो जाता, विपत पर विपत आवे तो यहाँ किसकी सामर्थ्य है विपत्ति से मुक्त करने की। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे है कि लाखों करोड़ों विपत्तियां आवे आती रहे लेकिन वे उसी स्नेह से बचाते रहे। द्वारका जाने से पहले ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए तो उसकी अंत में याद कर रही द्रोणी अस्त्रतः, द्रोणी के अस्त्र से अभिरक्षिता आस्म, आस्म माने अभवाम, हम हैं सुरक्षित हैं। आज भी मैं अपने पुत्रों के साथ बिल्कुल सुरक्षित, कोई कष्ट नहीं, आपके द्वारा रक्षित। इस तरह कुछ विपत्तियों का लिस्ट भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस विपत्ति से आपने हमारी रक्षा किया। हे हरे, हे शरणागत का दुख हरने वाले, आपने हमारी रक्षा किया। लेकिन अब कुंती महारानी को यह दुख हो रहा है कि विपत्तियां समाप्त करके कृष्ण अब जा रहे हैं, हम पर कोई विपत्ति नहीं रही तो अब ये नहीं आएंगे, अब इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से, श्री कृष्ण हमारे साथ रहे इस लालसा से विपत्तियों को ही वरदान के रूप में मांग रही। जब जब विपत्ति आई तो कृष्ण आते थे, जैसे दुर्वासा जी के द्वारा विपत्ति आई तो द्वारका से तुरंत आ गए, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उसमें द्वारका से आ गए, कई बार आकर के दर्शन देते थे, रक्षा करते थे। तो अब विपत्तियां नहीं रहेंगी तो ये नहीं आएंगे, इसलिए कृष्ण के आगमन में दर्शन में कारण विपत्तियां हैं, अतः विपत्तियों को वर के रूप में मांग रहे हैं। उनको विरह सता रहा है कि हाय हाय अब कृष्ण नहीं आएंगे क्योंकि हमारे सभी शत्रु मर गए, महाभारत युद्ध में दुर्योधन आदि सब समाप्त हो गए। यह सुन करके, यह सोच करके कष्ट हो रहा है कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, तब विपत्ति मांगती है। विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम जत्स्यादा पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, सबके हितैषी आप हैं, सबके गुरु आप हैं, आप जानते हैं कि किस व्यक्ति का हित कैसे होगा, जो हित करता है उसको गुरु कहते हैं, और जगत का पूरा हित करने वाले भगवान है, इसलिए इनको जगत गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ केवल उपदेश करने वाला नहीं होता है, हित करने वाला, उपदेश हित योजना में काम है, उपदेश से हित होता है। कृष्ण जगत गुरु है, यदि किसी भक्त पर विपत्ति देते हैं तो इस तरह वे एक भक्त को शुद्ध करना चाहते हैं, उसका हित करने के लिए विपत्ति देते हैं। इसी भाव से कुंती महारानी कह रही कि तत्र तत्र, तत्र तत्र मतलब वहां वहां, हमारे जीवन के पग पग में, क्षण क्षण में विपत्तियां आती रहे, विपत्तियां रहे, ऐसा वरदान तो किसी ने नहीं मांगा था। विपद संत, विपद बहुवचन में है, विपत्तियां रहे संत, विपत्तियां रहे, कब कब, साल में एक बार या दस वर्ष पर एक बार, पर तत्र तत्र प्रतिदिन पल पल पर विपत्तियां आती रहे। क्यों? कुंदी महारानी कहती है क्योंकि जत भवतो दर्शनम स्यात्। कारण है कि उन विपत्तियों में जत मने जासु, उन विपत्तियों में आपका दर्शन होता है। जब विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है तो मुझको विपत्ति ही चाहिए। भगवान पूछते हैं कि मेरे दर्शन से क्या लाभ है। कुंती महारानी कहती है अपुनर्भव दर्शनम, आपका जब दर्शन होता है तो संसार के दुख का दर्शन नहीं होता है, भाव दर्शन नहीं होता। भू धातु से भाव शब्द बना है। भू का अर्थ होता है होना, बारंबार होना। हम लोग इस समय इस शरीर में हैं, यह शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरे शरीर में होंगे, तो भूख प्यास बुढ़ापा रोग का दुख भोगेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दूसरे शरीर में होंगे। तो बारंबार शरीर ग्रहण करना, मरना, दुख भोगना, बुढ़ापा के अधीन होना, रोग के अधीन होना, शोक के अधीन होना, क्रोध के अधीन होना, इसको भाव कहते हैं। भाव, और यह समुद्र की तरह अनंत है, भाव सागर, जन्म मरण रूप भाव सागर। तो श्री कृष्ण का जो स्मरण होता है, श्री कृष्ण का दर्शन होता है, तो यह भाव दर्शन नहीं होता है। जब भावतो दर्शनम होता है तो भाव दर्शन नहीं होता है। आपका दर्शन होने पर भाव दर्शन समाप्त हो जाता है, फिर जन्म मरण का झमेला समाप्त हो जाता है। और यहाँ भाव का अर्थ है दुख। सबसे बड़ा दुख है कृष्ण की आप साथ में न रह, यही सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा सुख यही है कि आप साथ में रह। तो विपत्तियां विपत्तियां नहीं है, सबसे भारी विपद है आपसे भेंट न होना। इसलिए आपका दर्शन जिस कारण से हो रहा है वो कारण मैं जानती हूँ कि विपत्तियों के कारण आप हमारे पास रहते थे, इसलिए विपत्तियां हमारे जीवन में पग पग में रहे। अब इनको शोक है कि अब तो हम लोग राजा हो गए, हमारा पुत्र राजा हो गया, हमारे सभी शत्रु मारे गए, तो हो सकता है कि हम संसार के आवेश में आकर कृष्ण को भूल जाएं। तो संपद जो है वो अनर्थ करने वाला होता है, उसको फिर कह रही है जन्म ईश्वर जसुत श्री भी रेध मान मद अपमान नैवार हत्य विधा तुम वही त्वाम किंचन गोचर गोचरम। जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है तो उसे अभिजात्य के कारण, और जिसको बहुत बड़ा धन प्राप्त होता है, पद प्राप्त होता है इस कारण, तथा जो पढ़ा लिखा हो जाता है, विद्या प्राप्त करता है वह, और जिसे सुंदर शरीर प्राप्त होता है वह, इन कारणों से इतना मद बढ़ जाता है पुरुष का इस जगत में कि वे तो आपका नाम उच्चारण भी नहीं कर सकते। नैव एव अभिधातु वही अर्हति, आपका नाम उच्चारण करने में भी वो समर्थ नहीं होता है। श्री कृष्ण गोविंद इत्यादि नाम नहीं बोल सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अपने जीवन का बहुत बड़ा अनुभव कुंती महारानी बोल रही है। यह उच्च कुल में जन्म लेना मनुष्य को कृष्ण भावना से गिराने वाला है। उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतना मद में होता है कि वह भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, और क्या भक्ति करेगा। जन्म ऐश्वर्य, एक तो उच्च कुल में जन्म हुआ और उस पर भी कोई बड़ा बड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, तो वह व्यक्ति भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, मद बढ़ जाता। मद एक ज्वर के समान है, जब ज्वर आने पर मनुष्य की हालत बिगड़ जाती है, वैसे ही जब गर्व आता है, मद आता है, तो फिर होश में नहीं रहता है आदमी, वो पहचानता भी नहीं है गरीबों को, उसके पैर उठपटांग चलने लगते हैं। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि लक्ष्मी मतलब धान ये विष की बहिन है, समुद्र से विष निकला था और लक्ष्मी जी भी निकली थी समुद्र से, तो समुद्र के से निकलने के कारण जो गुण विष में है वही लक्ष्मी में है। भाई बहन होने से, तो तो विष खाएंगे तो अंग टेढ़ा हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जीवित रखती है, परंतु जरूर यह टेढ़ा तो कर ही देती है, अंधा कर देती है, बहरा कर देती है। धन बहुत हो जाए और बड़ा पद मिल जाए तो आदमी बहरा हो जाता है, बहरा हो जाता है। फोन करते रहिए, फोन तक नहीं उठाएगा, रख देगा, हटाओ फोन। मैं एक बार एक व्यक्ति के पास फोन किया था अमेरिका में, तो घंटी बज रही थी, घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। वही व्यक्ति बैठा था, बाद में पता चला, तो पता चला कि वो कभी फोन नहीं उठाता, उसका सेवक फोन उठाता। ये तो यहां भी है सब, बहुत बहुत बार बहरा हो जाता, सबकी बात नहीं सुनता, और उसके पास बैठी सरकार ये काम है तो बहरा, वो बातचीत में व्यस्त रहता, वो सुनता है सब लेकिन जवाब नहीं देता। सरकार, सरकारी काम करना है, एक अप्लीकेशन है, तो हो सकता है ऑफिस बंद करने का टाइम हो जाए, वो सुनता ही नहीं, बहरा हो जाता और अंधा हो जाता, देखता नहीं, उसकी चाल बदल जाती। तो कवि कह रहा है कि वो तो विष की बहन है लक्ष्मी, धन जान से नहीं मारी, यही काफी दया है उसकी, अंधा लंगड़ा करके छोड़ दिया तो कौन ज्यादा किया है ना। लक्ष्मी अंधा कर देती है। अब इस तरह से भी देखिए, कोई बहुत धनी आदमी बाहर के दुखी नहीं होंगे, इस भागवत में सुनने वाले बहुत धनी धनी लोग नहीं आए, उनको अपने काम से फुर्सत नहीं है, उनको अपने पद से फुर्सत नहीं है। मैं यह मैनेजर हूं, मैं ऑफिसर हूं, ऑफिसर मतलब ऑफिस में बैठने वाला, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये भागवत जो है ये ऐसे जो लोग फालतू हैं उनके लिए। तो फालतू लोग आए हैं, हाँ, भागवत सुनने में कारण एक गरीबी भी है, यह भी एक कारण है और यह भगवान का वरदान है। ऐसे ऐसे भक्त भागवत सुनने के लिए आए हैं जो जनरल डिब्बे में आए और जनरल डिब्बे में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको बाईवान का टिकट दिए फिर भी वो नहीं आने वाले, नहीं आएंगे। वो सुन नहीं सकते, उनको सोचते हैं जन्म ही स्वर्ग सुता श्री, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे जाकर के बैठूंगा नीचे, कैसे सुनूंगा। यह अभिमान होता है। कुंती महारानी इस तथ्य को खूब समझती, धन पद और उच्च जाति में जन्म कितना आदमी को अंधा बना देता है, नहीं सुन सकती। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो बीच में बैठेगा नहीं, कहेगा इन ग्रामीणों के बीच में मैं बैठूंगा, मेरी हीनता हो जाएगी, ये हो जाएगी। शराबियों के बीच में बैठने से उसका जस बढ़ जाएगा और भागवत सुनने वालों के बीच में बैठा तो उसकी बेइज्जती उसी दिन प्रमाणित हो जाएगी। ये देखा हुआ, देखी हुई बात है। और जो बहुत धन कमाता है वो जल्दी ये सब सुनता नहीं, क्योंकि जब सुनने बैठेगा तब तक कई लाख का उसका घाटा होता है ना। कुंती महारानी जो भी भगवान से बात कर रही हैं बिल्कुल 100% सत्य बोल रही हैं, और इसीलिए वे चाहती हैं, क्योंकि उनका पुत्र अब सम्राट हो गया और उसके जीवन में अब कोई बाधा नहीं रही, इसलिए कुंती को भय है कि हम लोग कृष्ण को भूल सकते हैं। संपत्तियों का ऐसा प्रभाव होता है कि आदमी भूल जाता है। या कोई घर में बंद है, बहुत बड़ा आदमी, धनी आदमी, उच्च पद वाला, उसका दरवाजा खटखटाइए तो भीतर से आग जैसा क्रोधित होकर के निकलता है। क्या बात है, क्या समझ रहे हो, कोई कुत्ता आकर के दरवाजा खटखटाया क्या, क्यों इतना कड़ा बोला। इसलिए वो सोचता है मेरे पास धन है, ये कौन आदमी आकर के हमको डिस्टर्ब किया, कौन है, और नौकर को फोन करता है जल्दी इसको बात करो कहां से आ गया, एक बार की सत्य घटना मैं सुना रहा हूँ। दिल्ली की भक्तों ने मेरा प्रोग्राम किया था एक जगह, एक अपार्टमेंट में प्रोग्राम किए थे और सब लोग अकस्मात चले गए वहां, मैं पीछे से गया। तो उस दिन मैं वृंदावन से आया था, वृंदावन मेरा चप्पल चोरी चला गया था, मैं चप्पल भी नहीं पहना था। और वृंदावन में सभी लोग जानते हैं कि वहां ये आयरन वायरन रोज होता नहीं है, कपड़ा दूसरे ढंग का रहता है, इधर आने पर तो रोज कपड़े को सजा दी जाती है आयरन और धोना सब। वहां सब भक्त गए थे, पहले चले गए थे, प्रोग्राम मेरा था। वो लोग कीर्तन जाकर चालू कर दिए थे, महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे, और महाराज जी तो महारंक के रूप में जा रहे थे। तो मैं आया, हमको एक लाइफ मेंबर छोड़ दिए नीचे और कहे कि महाराज चाहिए इस महल, इस फ्लैट पर जाना है, इस तले पर जाना है। तो मैं उधर जा रहा था, तब तक वो एलिवेटर, क्या कहते हैं एलिवेटर, लिफ्ट, लिफ्ट चलाने वाला सिक्योरिटी नीचे बैठा था। वो कहा इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं चाहिए। अब तो मैं तो अब क्या कहूँ कि अरे भाई मेरा ही प्रोग्राम है, मैं चुपचाप रह गया। अब मेरे मन में हो गया कि लौट जाऊंगा, बहुत तिरस्कार करते हुए बोला, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी ओर से कहा इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। वो समझा कि कहीं का फालतू कोई आदमी आ गया, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। तब तक वो लाइफ नंबर सुन लिया और वो कार चालू नहीं किए थे, वो आ गए, मैं वहीं खड़ा था। तो आ करके और उसको इतना कड़ा बोले, अंग्रेजी में लगे कहने रास्कल, दोस्त कहेंगे हिंदी का प्रोग्राम है और कह रहे इधर नहीं, इधर नहीं। तो इस तरह गरीब आदमी का व्यक्ति तिरस्कार करता है। अब वो बेचारा समझा, उसका दोष नहीं था, वो समझा कि ये दिल्ली स्कान से आए हुए इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए सब भक्त हैं और ये कहीं का भिकमंगा होगा, कहीं से आ गया है। मैं वृंदावन से डायरेक्ट आया था। अंत में वो मुझसे आकर के क्षमा मांगने लगा, कथा में भी बैठा था, कथा के बाद तब वो और अधिक क्षमा मांगने लगा। जो कुछ भी हो, इस तरह से ये धन संपत्ति का नशा होता है। वहां तो उसके पास धन संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन अन्य लोगों से तुलना करके इस तरह से वो किया। जो व्यक्ति एसी में बैठ करके जाता है, बाइवान से जाता है, वह व्यक्ति कभी भी क्या गरीबों के दुख को समझ पाता है? जनरल कंपार्टमेंट में लोग कैसे जाते हैं? नहीं समझ पाता है, नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब उसी आदमी को उस स्थिति में डाला जाता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि और लोग भी दुख भोग रहे हैं, देख रहे हैं। एक सम्राट की माता कुंती कह रही है कि ये सब जो वस्तुएं हैं वो आदमी को अंधा कर देती है, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, हमें विपत्ति दीजिए, विपत्ति दीजिए जिससे आप में मन लगा रहे, हमेशा रोता रहे मन और आपको पुकारे। विपत्ति में जो पुकार निकलती है भगवान के प्रति, वो संपत्ति में वास्तव में नहीं निकलती। जब किसी पर बहुत भारी विपद पड़ जाती है, तो उस समय जो पुकार निकलती है हृदय से, हे कृष्ण अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए, तो वो उस पुकार में बहुत शक्ति होती है, भगवान बहुत जल्दी आ जाते हैं, सुन लेते हैं। और ऐसे सारी सुविधा है, सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है, हरे कृष्ण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तकिया लगाए बैठे हैं, हरे कृष्ण, इस भक्ति से भगवान मिलने वाले नहीं। दो चार लाख बैंक में भी है, करोड़ों बैंक में भी है, और खूब पता चले बहुत बड़े भक्त हो गए थे, महाप्रीचर हो गए, कभी पुकारा क्या भगवान को रोते हुए हृदय से, कभी ऐसा एहसास हुआ कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है? नहीं, वह तो विपत्ति में ही अनुभव होता है। कई भक्तों का यह अनुभव है, विपत्ति में भगवान को जो हृदय की पुकार होती है, वह इस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि संपत्ति तो परिपंथी है भक्ति का, भक्ति में बाधक। इसीलिए कुंती महारानी इस सौभाग्य को मांग रही है। भयभीत नहीं होना चाहिए कि हमें कहीं हमारे लिए भी ये कुंती न मांग दी हो। कुंती जानती है विपत्ति में कृष्ण के स्मरण की कला वो जान गई है। वास्तव में वो विपत्ति नहीं मांग रही है, वह मांग रही है कृष्ण का दर्शन। असली बात ये है, लेकिन विपत्तियां सहायक है कृष्ण दर्शन में, इसलिए विपत्तियां मांग रही है। जो छूछे विपत्ति नहीं मांग रही है, विपत्ति तो ऐसे पड़ी ही हुई है, पदम पदम जद विपदा, ये तो विपदम पदम जगत है, ये विपद और नया क्या मांगना है। जन्म है, मरण है, रोग दुख शोक विपद कौन कम है कि भगवान से मांगना है। लेकिन विपत्तियों में भगवान का स्मरण होता है, इसलिए मांगा जाता है। भक्त लोग विपत्ति में भगवान का स्मरण करते हैं और लोग नहीं। कुंती महारानी खूब अभ्यस्त है। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो कितने हृदय से पुकारा कि भगवान आ गए। गजेंद्र ने पुकारा भगवान को तो आह भर करके तो भगवान आ गए। तो वह आह बिना विपद के नहीं आती है ना, ये सबका अनुभव होगा कभी कभी। मेरा पर्सनल अनुभव है विपत्ति में किस तरह भगवान को पुकारा जाता है, अति चिरम रुद्धा यह स्मरण आता है। और भगवान कितना सुनते हैं जल्दी, इसका भी अनुभव हमारे जीवन में है। वास्तव में जो विपद होती है कि हम वैसे नहीं समझते, हमको तो भय लगता है विपद से नहीं रहे ऐसी स्थिति फिर आने पावे। लेकिन कुंती महारानी अभ्यस्त है, विपत्ति में ही कृष्ण आएंगे साथ, इसलिए वो विपत्तियां मांग रहे हैं। और संपत्ति को अनर्थकारी बता रही, जन्म स्वर्ग सुता श्री भी एध मान मद नैवर हत्य विधातु मय न एव अभिधातु मरहती, वो नाम भी नहीं ले पाता। कई ऐसे धनी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, हमको कहिए हरे कृष्ण तो हाँ ठीक है, अरे बोलिए हरे कृष्ण तो हाँ ठीक है ठीक। एक बार दिल्ली में मैं था, लाइफ मेंबर बनाने गया, तो एक जगह जाकर के दरवाजे पर घंटी बजाया, हमारे साथ गया हुआ भक्त इलेक्ट्रिक बेल। तो एक औरत आई, पूछी क्या बात है, हरे कृष्ण वाले हो, बंद कर दिया दरवाजा। तो मैं तो पड़ गया, अब इसको तो मेंबर बना कर कहीं जाना है चाहे कुछ भी। तो हम फिर घंटी बजाए, तो फिर वो औरत आई, उसका पति भीतर था। अब क्यों घंटी बजाए, मैंने कहा भाई आपके लिए, आपके पति के लिए घंटी बजाए, वो घर में है, अब है क्या बात है, आप लोग आदमी नहीं है। मैंने कहा आदमी नहीं होते तो घंटी कैसे बजाते, आदमी है इसलिए घंटी बजा, फिर बंद करके चले गए, तो फिर हम घंटी दबाए। तो इसके बाद उसका पति आ गया, वो खूब क्रोध में बड़बड़ा रहा था, खूब बड़बड़ा रहा। हमने कहा कि देखिए हमको आपसे और कोई काम नहीं, हमको यही पूछना है कि आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, हम केवल यही जानना चाहते हैं, और यही जानने के लिए हम बार बार घंटी बजा रहे हैं। जब केवल दो मिनट हमारे साथ बैठी और ये बताइए कि हमारे प्रति जो आपका क्रोध है इसका कारण क्या है, हम तो बहुत अपने को फीका अनुभव कर रहे हैं कि हमसे प्रेम करने वाले आदमी नहीं है, आप हमसे क्यों घृणा किए, हम आपके यहां आए, एक आप आदमी है, हम भी आदमी है, ऐसा क्रोध नहीं किए होते तो हम चले गए होते, लेकिन अब हमें जिज्ञासा हो गई है कि आपके क्रोध का कारण क्या है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करना है, आप लोग जाइए जाइए जाइए, मैं जानता हूं आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन यही मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों बात नहीं करना चाहते। अब फिर बंद करके चला गया, तो फिर मैं दबाया घंटी। तो अब क्यों घंटी बजाए, मैं कहा भाई आपके लिए, आपके पति के लिए घंटी बजाए, वो घर में है, आप है क्या बात है, आप लोग आदमी नहीं है। एक आदमी नहीं होते तो घंटी कैसे बजाते, तो आदमी है इसलिए घंटी बजाते, फिर बंद करके चले गए तो फिर हम घंटी दबाए गए। तो इसके बाद उसका पति आ गया, वो खूब क्रोध में बड़बड़ा रहा था, खूब बड़बड़ा रहा। हमने कहा कि देखिए हमको आपसे और कोई काम नहीं, हमको यही पूछना है कि आप हम पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, हम केवल यही जानना चाहते हैं और यही जानने के लिए हम बार बार घंटी बजा रहे हैं। आप क्यों दो मिनट हमारे साथ बैठिए और ये बताइए कि हमारे प्रति जो आपका क्रोध है इसका कारण क्या है। हम तो बहुत अपने को फीका अनुभव कर रहे हैं कि हमसे प्रेम करने वाले आदमी नहीं, आप हमसे क्यों घृणा किए, हम आपके यहां आए, एक आप आदमी हैं, हम भी आदमी हैं, ऐसा क्रोध नहीं किए होते तो हम चले गए होते, लेकिन अब हमें जिज्ञासा हो गई है कि आपके क्रोध का कारण क्या है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करना है, आप लोग जाइए जाइए जाइए। मैं कहा आप, मैं जानता हूं आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन यही मैं जानना चाहता हूं कि आप क्यों बात नहीं करना चाहते। अब वो फिर बंद करके चला गया, तो फिर मैं दबाया घंटी। इसके बाद फिर बड़बड़ाता हुआ आया और मैं बार बार शांतिपूर्वक कह रहा था, तो मेरे मन में तो था लाइव नर बनाने की वास्ते, तो मैं कह रहा था कि आप क्यों नहीं बात करना चाहते, केवल यही बता दीजिए, चाहे यहां खड़े होकर के चाहे भीतर। तो कहता ठीक है चलिए भीतर। तो अब हम लोग आश्वस्त हुए ठीक है अब तो ये बनेंगे ही। तो भीतर गए बातचीत करने लगे, मैं कहा कि हम लोग रोज घूमते हैं इस तरह से, लेकिन प्रथम बार आप जैसे व्यक्ति मिले, हम अपने दोस्त इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन आप हम में कौन दोष देखे कृपया बताइए कि आप हमसे इस तरह क्रोध से बोले, हम आपके घर पर आए और आप ऐसे डांट रहे, हमने क्या अपराध किया। अपराध नहीं, ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं, ये हम सोचे आप पैसे के फेरे में आए हैं। मैं कहा पैसे के फेरे में बिल्कुल नहीं आया, आप इस एकदम निश्चिंत हो जाइए, मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैं मुझे तो जिज्ञासा हुई आप बताइए आप क्यों क्रोध किए हम पर व्यक्तिगत। तो कहा नहीं नहीं मेरा क्रोध नहीं है, धीरे धीरे शांत होने लगा, क्रोध नहीं है क्रोध नहीं है। तो हम बताने बताए कि देखिए हम लोगों का कार्य है, हम लोग भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि घर घर में जाकर के भगवान का नाम सुनाओ, तो हम तो आए थे आपको भगवान का नाम सुनाने के लिए, कुछ बात कहने के लिए, और आप इसी पर क्रोधित हो गए, हमने क्या अपराध किया था आपका, कुछ आपके साथ मुकदमा चल रहा है क्या हो रहा, हमने क्या किया था कि आप इतने क्रोधित हो गए। अरे नहीं क्रोधित नहीं कुछ नहीं, ठीक है मेरा दिमाग काम नहीं किया। अच्छा आप खाएंगे पियेंगे? तो पानी आया, इसके बाद फल काट करके आया, इस बात कहे कि स्वामी क्षमा कीजिए आपकी मैं क्या सेवा करूं। मैं कहा कुछ भी नहीं, मेरे मन में था कि मेंबर बने, लेकिन मैं कहा मैं कुछ भी नहीं, अब मुझे संतोष हो गया कि आप क्यों क्रोधित हुए, जब कुछ बताया नहीं हो। तो हम लोग जा रहे हैं तो कहा नहीं नहीं रुकिए 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 रुकिए, तो अपनी औरत से वो चेक बुक मांगा, और उस समय 1978 की बात, 11,000 रुपया दिया मंदिर के लिए चेक बुक काट कर। तो हम लोग चलिए, हम लोगों का तो मनोरथ सिद्ध हो गया। अब भी जब मैं दिल्ली जाता हूँ भेंट होती है तो बहुत हंसते हैं, अब तो वो मंदिर के भक्त हो गए, गोपाल कृष्ण महाराज के दीक्षित शिष्य भी हैं, अब वो ठीक हो गए। मैं ये कह रहा था कि इस तरह धन में रहने वाला आदमी बात तक नहीं सुनना चाहिए, नहीं बस बंद करो बंद करो बात मत करो। एक आदमी है कि दरवाजे पर भीख मांगता हुआ जा रहा है, कोई एक पैसा दे दे दो पैसा दे दे, और दूसरा आदमी देखना नहीं चाहता, उसे बात नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो भीख मांगो को देते भी हैं, 4 आना 8 आना 1 रुपया देते हैं, तो दे करके सुंदर वचन नहीं बोलते, दे करके कहते जाओ। है लगता है कि उनकी पूरी कार ही अबुर लेने वाला है, इसलिए भगाते जाओ, पर तो जाने के लिए जाएगा ही, थोड़ा मधुर वचन बोलो ठीक से बोलो। कुंती महारानी का अनुभव है कि धन के घमंड में रहने वाला व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, चार चीज को भक्ति में बाधक बता रहे हैं, कुछ कुल में जन्म और धन, शारीरिक सौंदर्य और विद्या। हम तो देख रहे हैं कि यहां भागवत सुनने वाले अधिकांश लोग कोई कंप्लीट पढ़ाई किए हुए नहीं, कहीं से छोड़ा। तो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बाकी तो हारे वो पिता पढ़ाई छोड़ छाड़ करके अब तजी हरि भजन काज नहीं दूर जाए। भगवान का भजन छोड़कर दूसरा काम ही नहीं है और दूसरे लोगों को संसार के काम से फुर्सत ही नहीं है भजन करने। दोनों में बहुत अंतर हो गया। कुछ लोग इस भागवत में आए हैं कहां कहां से अपने घर छोड़ करके और कुछ लोग यही अपना घर छोड़कर नहीं आ रहे। कुछ लोग क्या, सभी लोग, ये इसमें कारण क्या है? कारण चारों में कोई न कोई है। धन कमाने के लिए अपनी दुकान में खड़े हैं तो ऐसे थोड़े हैं कि मर रहे हैं, दो दिन दुकान बंद कर देंगे तो धन नहीं रहेगा। ज्यादा धन है इसलिए धन हानि नहीं सही जाती। जिसके दुकान में प्रतिदिन कई हजार की आमदनी है वो तो दुकान बंद कर नहीं सकता, जिसके दुकान में 2-4 रुपए की या 100-150 किलो आमदनी होगी वो बंद कर देगा। वो ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन सुन लेते हैं। जो सोचे ऐसा होता है प्राय, तो धन संपत्ति भगवान के भजन में बहुत बाधक। इसलिए कुंती महारानी विपत्ति मांग रही, संकट मांग रही, उसमें भगवान का दर्शन होता है, स्मरण होता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।